फिर उसके बाद देखिए अगली नेमत, या यूहन्ना सुस्कुरु नेमत अल्लाही अलैकुम, ए लोगो अल्लाह की इस नेमत को याद करो जो तुम पर हुई है। कौन सी? कि तुम्हारे पास नबी आया, अल्लाह ने तुम ना शुक्रों को एक नबी दे दिया। कितने हजारों साल के बाद अल्लाह ने अरब की जमीन को गीला किया वही की बारिश से, तुम्हें इसकी कदर नहीं है? तुम अल्लाह के एहसानात को याद करो तो तुम्हारी आंखें खुल जाएं। अब बताओ, हल मिन खालिकिन गैरुल्लाह, है कोई खालिक अल्लाह के सिवा? नो नो। कौन सा? यरज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्दी, जो तुम्हें रिस्क देता हुआ आसमान से और जमीन से। कोई जवाब नहीं, खामोशी। यहां आप फील करेंगे खामोश, नो रिप्लाई, नो वन इज आंसरिंग द कॉल, नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो अल्लाह खुद कहते हैं, अब मैं तुम्हें इसका जवाब बताऊं, कोई भी नहीं है बल्कि ला इलाहा इल्ला हुआ, उसके सिवा और कोई नहीं है। तो फिर तुम ये तो अब बता दो, चलो इतनी सी बात तो बता दो, फाना तू फकून, फिर तुम कहां से उल्टे फिराए जा रहे हो? तुम्हारी मत क्यों मारी गई है? इफ्क कहते हैं पलट जाने को, अकल ही पलट जाती है ना बंदे की, कि जब तुम्हें अल्लाह के सिवा कोई देने वाला नहीं तो तुम किन के दरों पे जाते किन की जूतियां सीधी करते, तुम किधर हो? है कोई रिस्क देने वाला, औलाद देने वाला, बीमारों को सेहत देने वाला? शिर्क के ये सारे तसव्वुर बेबुनियाद है। तो याद रखो, फिर अल्लाह ही से मांगो। इंसानों के दर पे जाकर खुद को जलील क्यों करते हो? देखिए कोई अपने ही जैसे से मांग ले तो कितना बुरा लगता है। हमेशा दुनिया का भी कोई काम होता है तो हम उससे मांगते हैं जो हमसे ऊपर हो, क्योंकि हमारे पास वो काम नहीं है, हम वो काम नहीं कर सकते। तो जब हम अपने ही जैसे से मांगे, वो कहेगा भाई अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते थे। हम अल्लाह के मां सिवा से मांग कर हकीकत में ऐसे ही करते हैं। हर चीज अल्लाह के हाथ में, कोई उसके फैसलों को रोक नहीं सकता। हकीम भी है, हिकमतों के साथ फैसले करता है, देता है तो हिकमत के साथ देता है और लेता है तो हिकमत के साथ लेता है। अब तुम उसका शुक्र अदा करो, उसके बगैर किसी की तरफ जाओ, उसको छोड़कर कहीं जाओगे तो नुकसान जो होगा वो ये होगा कि चीज तो कोई नहीं मिलेगी लेकिन तुम्हारी जन्नत तुम्हारे हाथ से छिन जाएगी। बस लोग दुनिया की छोटी छोटी नेमतों को पाने के लिए अबदी जन्नत को खो रहे हैं। आपको पता, बेटा नहीं है, कब्रों पर जाके मांग रहे हैं। कब्र वाले के पास बेटे की ताकत होती तो वो खुद ना कब्र से निकल के बाहर आ जाता। इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं, वहीं युकज्जिबू का फकत कुज्जिबत रुसुल मिन कबलिक। यहाँ देखिए चौथी आयत से तसल्लियाँ शुरू हो गई हैं। ए नबी, अगर ये आपको झुठलाते हैं तो कोई बात नहीं, इनकी आदत है, इन्होंने पहले रसूलों को भी आपसे पहले झुठलाया था। ऐसे होता है ना दुनिया में, जब आप अपनी दोस्त को रोता हुआ देखती हैं या आप किसी अपने घर वालों में किसी को परेशान देखते हैं, फिर आप कहते छोड़ो ना, अब इसकी बात का क्या बुरा मनाती हूँ, तुम्हें पता है इसकी तो आदत ही है, ये तो शुरू से ही ऐसा है, ये तो पहले माँ के साथ भी ऐसे करता था, या अब इसने बीवी को भी सताना शुरू कर दिया, छोड़ दो। तो जब आदत है किसी की तो क्या दिल मैला करना। और आप देखिए कि बाज सब ऐसे हालात होते हैं घरों में कि बाज मर्दों की आदत ऐसी नहीं होती अच्छी कि बीवियों को खुश रखे, फिर 2-4 साल के बाद अक्लमंद बीवियां जो समझौता कर लेती हैं, कहती हैं बोलते रहे, अब मैं इनकी बातों पे रोगी हो गई तो क्या होगा, इन्होंने तो झुटलाना है, इन्होंने तो करना है। क्योंकि जब आप किसी का गम दिल को लगा लेते हैं ना तो आप अपनी खूबियों को भी जाया कर देते हैं। अब मक्का वालों ने झुटलाना था और उन्होंने नहीं, हर एक ने झुटलाया उसको जो उनके पास हक बात लेकर आया, जिसने हक बात कही वो झुठलाया गया, ये मान लीजिए। तो कहा कोई बात नहीं, वही अल्लाह ही तुरजोल उमूर, और अल्लाह ही की तरफ तमाम मामलात लौटाए जाएंगे। यानी तुम अपने मामले को अल्लाह के खाते में डाल दो, सीधी सी बात है, वो खुद निपट लेगा। ये आपकी बात नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं, इनका नसीब खोटा है, आपके कहने या ना कहने से फर्क क्या पड़ेगा, बस इनकी बात की अहमियत छोड़ दें। देखिए ये खुश रहने का राज भी है, जिंदगी में अगर हर एक की हर बात को आप दिल पर लेंगे ना तो आप खुश नहीं रहेंगे। तो बेहतर तरीका क्या है, जो जितना अहम है उसकी बात को उतनी अहमियत है। ये रूल मैंने आपको पीछे भी लिखाया हुआ है, जब हम मामलात की बातें करते हैं, शौहर बीवी के मामलात हैं, खानदानी मामलात हैं, हम हर ऐरे गैरे फकीर अमीर की बात को दिल पे ले लेते हैं, और दिल में खूबी जो है कि बस मुझे कोई बुरा ना कहे, मैं अच्छी बन जाऊँ, नहीं, आप सबसे अच्छी नहीं बन सकती, कोई ना कोई तो आपको बुरा कहेगा, तो मान लीजिए, एडमिट इट। कोई बात नहीं, हाय मुझे क्यों कहा, हाय मैं तो इतनी अच्छी थी, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मैं तो बहुत संजीदा थी। भाई नहीं हूं मैं इंसान। इसमें भी आप देखें, जब हम दूसरों की हर बात को बुरा मनाते हैं ना, तो उसमें अपनी जात की बड़ाई होती है। मुझे कहकर तुम जाते किधर हो, मेरे जैसी हस्ती को तुमने चैलेंज किया, मेरे जैसी हस्ती की तुमने बात नहीं मानी, मैं इस मैं को कुचल के, इसको ब्लेंडर में डाल के कुचल के खत्म कर दो, अगर तुम हकीकत में अल्लाह के काम के बनना चाहते हो। यही पैगाम है। वरना आप जरा इमेजिन कीजिए, आप इस आयत को जरा विजुअलाइज करें, अल्लाह के नबी बैठे हैं, सर पे हाथ रखा हुआ है और रो रहे, आंखें ऐसे दुरी हुई है, भाई क्या हुआ, वो मैया बिन खलफा यार देखो क्या कह के चला गया, और रो रहे हैं और आंखें, क्या बताऊं, आहें भरे, क्या बताऊं, मेरी भी कोई जिंदगी है, क्या बन गया मेरे साथ इस दीन के नाम के साथ, मुझे सच बताइए ये काम कर सकते जो करके गए। अगर लोगों की बातों को आप अपने दिल दिमाग के ऊपर ही लेते जाएंगे, आप क्या करेंगे, आपकी तो खाना भूख खत्म हो जाएगी। इसलिए अल्लाह कहते हैं डोंट केयर, ये इस काबिल भी नहीं है कि इनका गम मनाओ, छोड़ो इनको, अल्लाह की तरफ मामले करो। और फिर इंसानों को पुकारा, और इस सूरत में या अय्युहन नास का लफ्ज़ बहुत दफा आता है। इसकी आयतें मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे सूरह यूनुस भी याद आ रही है, उसका और इसका मिजाज आयतों के शुरू के अंदाज से मिलता जुलता है, अगर आप बाद में जाके नोट करें तो। क्या फरमाया, या अय्युहन नास, ए लोगो, इन्ना वादल्लाहि हक्कुन, बेशक अल्लाह का वादा सच है। क्या वादा है अल्लाह का, दुनिया के बाद आखरत, नेकियां करोगे तो जन्नत, नाफरमानियां करोगे तो बुरी जगह। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, तो ना धोखे में डाले तुमको दुनिया की ये जिंदगी। पहली चीज लिखिए, इस आयत में दो धोखेबाजों का जिक्र है। पहली चीज जो तुम्हें धोखे में ना डाले वो ये दुनिया है, कि दुनिया है ही धोखा। और वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गुरूर, और अब दूसरा, और ना तुम्हें धोखे में डाले अल्लाह के बारे में वो बड़ा धोखेबाज। याद है सूरह लुकमान आयत 33 में भी पढ़ चुके हैं, अल गुरूर शैतान का इसी तरह नाम है जैसे अल्लाह ताला का नाम अर रहीम, अर रहमान, अल मालिक, अल कुद्दूस है, सुपरलेटिव डिग्री है। और लस गुरूर गर्रा से है, गैन रौरा, अगर गैन की पेश के साथ हो तो फिर मस्दर होता है, और गैन की जबर के साथ हो जैसे यहां गरूर है, गुरूर नहीं है, तो फाउल के वजन पर मुबालगा है, सुपरलेटिव डिग्री है। बस अब ये कह लें बहुत बड़ा धोखेबाज, मुराद इबलीस है। अक्सर लोगों को अल्लाह के बारे में धोखे देता है, अल्लाह बड़ा रहीम है, करीम है, शफीक है, मगफरत करने वाला, तुम्हें क्या फिक्र है, तुम्हें किस बात की फिक्र, तुमने कौन से बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं, लोग तो इससे भी बड़े गुनाह करते हैं, और ये सूद का काम इसका क्या, ये तो सब करते हैं, वो फलां का वो हो गया, वो बड़ा गफूर रहीम है, वो तो बड़े गुनाहगारों की बातें करता है। जब तक बंदा गुनाह करता नहीं है ना, तो शैतान कहता है अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, बड़ा गफूर रहीम, कर लो कर लो, इस सो इट्स नॉट अ बिग डील, कर लो कर लो। जब गुनाह करता है तो अपनी बात को पलट जाता है, फिर बंदा कहता है चला गफूर रहीम है, माफी मांग दो या रब्बी फिर ली, या मुझे माफ कर, कहता ना 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 ना, इतने बड़े गुनाह करके अब उसके पास जा रहे हो, उसने नहीं माफ करना। पहले कहता कर लो कर लो कर लो, जब कर लेते हैं कहता नहीं अब कोई नहीं होना, फिर डिप्रेशन में डाल देता है, फिर वो दूर से दूर करके इंसान को धोखे में डालता है। अल्लाह उसकी इस इबलीसियत से हमें यहां समझा रहा है कि देखो ये दो चीजें हैं जो इंसानों को अल्लाह से दूर करती हैं, इतने प्यारे रब से दूर करती हैं, एक दुनिया की रंगीनी, इसमें गुम हो जाते हो, धोखे में आते हो, ये चार दिन की जिंदगी थी तुम इसको हमेशा की जिंदगी समझते हो, ये है वो दुनिया जिसके पीछे तुम मरते हो, हालांकि ये दुनिया तुम्हें छोड़ के जाने वाली है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के सफर में थे तो आपके पीछे एक बुढ़िया पड़ गई, तो आपने ऐसे उसको धुतकार के पीछे कर दिया, तो बाद में फरिश्ते ने बताया कि आपको था कि ये बुढ़िया दुनिया थी, अगर आप इसकी पुकार पे पलट के देखते और इससे बात करते तो आपकी सारी उम्मत दुनियादार हो जाती। अभी तो अल्लाह के नबी ने देखा नहीं तो उम्मत का ये हाल है, देख लेते तो हमने तो मुंह से बोल बोल के कहना था, क्योंकि आपने पीछे देख लिया था तो फिर हम तो दुनिया में जाएंगे। तो ये दुनिया धोखा है। वह मल हयात दुनिया अल्लाह मताउल गुरूर, सूरत आल इमरान 185 में हम पढ़ चुके हैं। तो इन दोनों से बचना है। इन शैतान लकुम अदू, बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है, फत्तखिज़ू अदूवा, बस तुम भी इसको दुश्मन ही समझो। कभी कोई दुश्मन को दोस्त समझता, और दुश्मन को कोई दोस्त समझे तो आप उसको क्या कहेंगे, बेवकूफ कहेंगे ना। बोल बोल के अल्लाह का कलाम हमें बताता है कि शैतान दुश्मन है। शैतान खुद अपने जिंदगी के तजुर्बात से हमें सिखाता है कि वो हमारा दुश्मन है। एक बार 420 करता हम उसकी बातों में आते हैं, फिर दोबारा करता है, लेकिन इसके बावजूद हम उसको अपना दुश्मन नहीं दोस्त समझते हैं। ये भी शैतान का धोखा है। सबसे बड़ा तो इसका धोखा ये कहता है आई एम नथिंग, आई डोंट एग्जिस्ट, मैं तो हूं ही नहीं। ऐसे शैतान शैतान को बुरा कहते हैं। बस दफा कुछ लोगों को आप कहें ना कि जैसे कोई गलत काम देखें आप उनका, तो आप कहते हैं आपको तो शैतान ने बहका दिया। यकीन करें सर के बालों को पड़ जाते हैं। हाँ, आपके ख्याल में हम शैतान की बातें मान रहे हैं। अच्छा भाई, आप जिसकी माने हमारी ना माने कम अज कम। यानी लोगों को ये भी बुरा लगता है जब आप उनको कहें कि शैतान ने आपको बरगला दिया, आप तो बहुत अच्छे। बड़ी अच्छी फाइट होते होते बची एक मौके पे, ऐसे मौके पे दो सिस्टर्स की, जब उनमें से एक ने कह दिया कि सिस्टर आप तो बहुत अच्छी हैं, बस आपको शैतान ने बहका दिया। कहती आप होती कौन है मुझे ये कहने वाली कि मैं शैतान के हाथों में हूँ। हम जब खुद को इतने प्रोटेक्टेड समझते हैं तो शैतान तो सर पे आएगा ना। अल्लाह ताला कहता है इसका काम करने का तरीका देखो, इन्नमा यदो हिस्बहु, बेशक ये तो बुलाता है अपने ही गिरोह के लोगों को, ली यकून मिन अस्हाबि सईर, ताकि वो जहन्नम वालों में से हो जाए। यानी जो लोग इसकी बातें मानते हैं, हर शख्स जिसकी नीयत दुरुस्त नहीं, जिसके अंदर शैतानी रुझानात हैं, जिसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है गुनाहों का, वो शैतान का आसानी से शिकार हो जाता है। आप देखिए कि वो कहते हैं ना कि इबलीस एंड सन्स, दुनिया में कंपनियां खुली हुई है ना, शैतान ने भी कंपनी खोली हुई है और वो लोगों को अपने बच्चों और अपनी नस्लों के साथ मिलकर बुलाते हैं। शैतान हर ऐसे इंसान की तरफ खसूसी तौर पर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और उसका हाथ पकड़ने के बाद उसको कभी नहीं छोड़ता जो जहन्नुम के रास्ते पे चला हो। हमारी जुबान में उर्दू में कहते हैं ना कि बुरे को उसके घर तक पहुंचा के आओ, शैतान बिल्कुल यही करता है। सूरत अल-अराफ के रुकू नंबर 22 में हम बलम बिन बाउर का वाक्या पढ़ चुके हैं। वही शख्स जिसके लिए अल्लाह ने मिसाल दी, कुत्ते की तरह उसकी राल टपकती है। बलम बिन बाउर इल्म वाला शख्स था, आबे तजाह तालिम था, लेकिन शैतान के वार से नहीं बच सका। और उधर हमने पढ़ा था फत बहु शैतान फकान मिनल खाबीन, आयत 175 आराफ में, कि पस वो उसके पीछे शैतान लगा और वो बहके वो में हो गया। तो कोई खुद को शैतान प्रूफ ना समझे। आप सोच रहे हैं हमने 22 पारे पढ़ लिए, अब शैतान हमें कुछ नहीं कहेगा, अब तो वो ज्यादा कहेगा। पहले तो आप काम की कोई नहीं थी, अब असल तो उसके काम की आप बनी है। कुरान पढ़ के आपको लोगों में जाके बदनाम कराएगा। देखो कुरान पढ़े हुए लोग ऐसे होते हैं, जितना शैतान कुरान पढ़ने वालों पे हमले करता है उतना वो गाने फिल्में देखने वालों को नहीं करता। इसलिए कि उनकी बात को मानता ही नहीं, उनका रोब क्या सोसाइटी में, वो तो मन चले हैं। कुरान से लोग जुड़ते हैं ना तो लोगों के दिमाग में एक खास किस्म का उनका मुकाम आ ही जाता है। फिर शैतान उनसे गलत काम कराता है, फिर कहता है देखो उसने शुरू किया था, छोड़ नहीं दिया। ये है कि पूरी पढ़ने वाली किताब, तौबा करो। कितनों ने पढ़ी है, आप देखिए लोगों के जुमले सुने, कितने लोग आते हैं वो फलां क्यों छोड़ गया, भाई हमें क्या पता क्यों छोड़ गया, मेरे तो ख्याल में कोई नहीं छोड़ के गया। लेकिन लोग जो खुद नहीं आ रहे होते ना, वो ये सुनना चाह रहे होते हैं कि फलां भी नहीं आता, फलां भी नहीं आता, और हम ना आके उनको खुशियां दे रहे होते हैं। तो शैतान लोगों में ये बात डालना चाहता है कि इट्स नॉट पॉसिबल टास्क। 5 वक्त की नमाज कौन पढ़ता है जी आज के दौर में, ये स्टाइल करके दिखाओ जरा, सूद के बगैर कारोबार। ये है उसका गिरोह जिसकी बात हुई गई। उंगली पकड़ लेता है शैतान ऐसे लोगों की जो ऐसे जुमले बोलते हैं, और ऐसों को अल्लाह ताला हिजबुल शैतान कहता है। कुरान में आप पढ़ेंगे, पढ़ भी चुके, कहीं बादुर रहमान, कहीं औलिया रहमान, और कहीं हिजबुल्ला और हिजबुल शैतान है। तो शैतान के गिरोह में जाने वाले पहले से उनके अंदर रिझान मौजूद होता है। ये लिख लें, जिन लोगों में पहले से शैतान दोस्ती का पोटेंशियल मौजूद होता है ना, शैतान उनको बड़ी आसानी से बहका लेता है। अबू जहल, अब्दुल्ला बिन उबई, अबू लहब, इसकी मिसालें हैं। इसके बरक्स कुछ लोगों में फितरी तौर पर पोटेंशियल मौजूद होता है अल्लाह वाला बनने का। हजरत उमर, हजरत हमजा शुरू से हिजबुल्ला में शामिल हो गए। कुछ देर हुई, 6 साल के बाद इस्लाम कबूल किया, लेकिन उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया ना। जो ही इस्लाम कबूल किया पता चल गया कि उमर असल में हिजबुल्ला में थे, हिजबु शैतान में वक्ती तौर पे फंस गए थे। अज़र मुजादला में हम पढ़ेंगे तकाबुल आएगा हिजबुल्ला और हिजबु शैतान का। कौन होते हैं जो शैतान के हाथों में फंसते हैं? अल्लज़ीना कफरू लहुम अज़ाबुन शदीद, ये वो लोग हैं जो कुफर की रविश अख्तियार करेंगे, इनके लिए सख्त अजाब है। अल्लाह हमें ऐसे बुरे अंजाम से बचाए। दिल की गहराई से दुआ करें। कितने लोगों को खौफ आता है कि शैतान के गिरोह में ना शामिल हो जाऊं, और इससे तो बेखौफ वही होगा जो पहले ही उसके अंदर शामिल होगा, वही नहीं इस बैड कंपनी को छोड़ना चाहता। इंसान को लत पड़ जाती है बुराइयों की, वो कहता है नहीं नहीं फिर जिंदगी फीकी हो जाएगी, शैतान की ना बात मानी तो फिर बोरिंग लाइफ, नथिंग वी कैन डू, वी कैन डू ये दिस एंड दो। अल्लाह कहते हैं नहीं, तुम एक दफा शैतान को छोड़ो फिर देखो तुम्हें क्या मिलता है। वल्लज़ीना आमनू वामिलु सालिहाती लहुम मग़फिरतुन व अज्रुन कबीर, और जो लोग ईमान लाएं और नेक अमल करें इनके लिए मग़फिरत और बहुत बड़ा अजर है। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें इन लोगों में कर दे। आप देखिए कि अभी तक जितनी आयतें हमने पढ़ी है ना, आपको इन सारी बातों में जो बात समझ आनी थी वो क्या थी कि अल्लाह फातिर है, उसने कायनात को एक हिकमत के साथ बनाया, उसने इंसान के लिए जन्नत तैयार की लेकिन शैतान उसके पीछे लग गया और वो उसको जन्नत से दूर करना चाहता है। शुरू की 7 आयत तिलावत सुनाइए, जो पढ़ा इसको एब्जॉर्ब करें।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير